अल्लाह सुबहान तआला की तारीफें करते हुए, उसकी बातें उसके साथ छेड़ते हुए, उसकी तारीफें की, मालिक यौमिद्दीन और रहमान और रहीम का इकरार किया, तो साथ ही फिर हमें अपनी औकात याद आ गई और हमने क्या कहा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अगर आप सूरह फातिहा पे नज़र जमा के देखें ना, तीन आयतें ऊपर हैं, तीन इस आयत से नीचे हैं, टोटल सात है। ऊपर की तीन आयतें अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला का तारुफ, ये जो आयत है ये बंदे का तारुफ है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है। याद रखिए, जब तक तीन बातें ना समझ आ जाए ना, हम दुनिया में आने का मकसद नहीं जान सकते। इस साल के दौरे कुरान की शायद इंट्रो की पहली बात थी मेरी जो मैंने बोली थी, अब दोहरा देती हूँ, अल्लाह कौन है, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों भेजा। जब तक ये तीन नजरियात दुरुस्त नहीं होते ना, एक बंदा बंदा नहीं बनता। हम अभी तक अल्लाह को अल्लाह ही ना समझे थे, ना मालिक समझे, ना रहमान, ना रहीम, ना रब, ना अल्लाह, तो इसीलिए तो मनमानियां करते रहे। थोड़ा सा डर लगा तो अब दूसरा सवाल उभरा कि अल्लाह तो सबसे ऊपर है, अल्लाहु अकबर, तो मैं कौन हूँ, इय्याका नअबुदु, मैं उसकी बंदी हूँ, गुलाम हूँ। और अंदाज देखिए, इसमें दो दफा एक जुमले का अंदाज है इय्याका। अगर आप इसको तर्जमा करें ना तो क्या बनता है, तेरी हम इबादत करते। ऐसे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा है जो बोलना सीख रहा। अमूमन हम क्या बोलते हैं उर्दू में, हम तेरी इबादत करते हैं, वैयाका नस्ताइन, और हम तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन आप जरा देखें इसकी तरकीब को, तेरी हम इबादत करते, तुझसे हम मदद मांगते, यानी तरतीब में कुछ गड़बड़ है। मतलब आप कहते हैं कि मैंने सेब खाया, आप ये तो नहीं कहते सेब मैंने खाया, मैंने गाड़ी चलाई, गाड़ी मैंने चलाई। यहां अंदाज ऑपोजिट है, ये क्यों है। बस वही बात जो मैंने अभी जुमला बोल दिया है कि बच्चे जब जुमले बोलना सीखते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जुमले प्यारे लगते हैं। क्यों, मामा को अच्छा लगता है, मामा पानी दे दो, बड़े होकर कहते हैं पानी दे दे, कोई जज्बात नहीं आते। ये जुमलों की तरतीब बता रही है कि इमोशंस डिवेलप किए जा रहे हैं। सूरत फातिहा को एक तो आप तजवीद की रोशनी में पढ़ते हैं ना, ये पढ़ना है आपने, लेकिन ये इंतहा नहीं है, इसको जज्बाती होके पढ़ना है। ए अल्लाह, इय्याका नअबुदु, मैंने तो भी बोलना सीखा है, मैं तो भी एक छोटी सी हस्ती हूँ, एक तेरी मखलूक में, एक मक्खी की नोक जितना छोटा सा जर्रा हूँ, मुझे अभी तो बातें भी कोई नहीं करनी आती। यानी ये बंदे की आजजी का इजहार है, अना को तोड़ा जा रहा है, ईगो को ख़त्म किया जा रहा है, क्या मालिक मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बस मुझे बोलना ही नहीं आता। और वैसे भी इय्या को पहले करके खास कमानी कर दी, ओनली कमानी, ओनली यू वी वर्शिप, यू वी वर्शिप, ये मानी है, लेकिन कहते क्या ओनली, यानी इय्या का लफ्ज शुरू में आ गया जिस बात उभारे और मफहूम में क्या आ गया कि तेरे सिवा कोई और है ही नहीं है हमारा। याद रखिए, सूरत फातिहा जो है ना, एक बंदे के साथ अल्लाह का जो मामला है ना, ये एक बंदे का अल्लाह के साथ, ये बिल्कुल वो कैफियत है जैसे न्यू मुस्लिम लिखें जुमला। सूरत फातिहा दिन में 17 बार हमें शहादा देने का मौका देती है। जब एक शख्स नया नया इस्लाम पे आता है ना, उसको बड़ी फिक्रें होती हैं, क्या करूं क्या ना करूं, है क्या वो क्या। सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने मुझे आपको सबको वही फीलिंग दे दी कि ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड ना इख्तियार करना कि वो मुस्लिम हूं, माँ मुस्लिम थी, बाप मुस्लिम था, बल्कि तुम हर दिन मुझे कहोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, शहादा लेते हैं, तजदीद ताल्लुक है। याद रखिए, हम में से कोई भी मुसलमान इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप मुसलमान है, बल्कि हम इसलिए कि शऊर है कि या कना बुदू व या कना स्टाइन। गोया कि आप कह लें कि सूरह फातिहा आपको बैक टू दी बेसिक्स का सबक सिखाती है, और बेसिक क्या, हम सब की ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की तरफ पलटना, और बैक टू बेसिक क्या, फितरा, जिस पे आप और मैं पैदा किए गए। तो हर बंदा अल्लाह ताला को इस बात का एहसास दिलाता है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के नहीं। आप अपने बच्चे को जरा देखिए, मारेंगे ना फिर भी वो आपकी तरफ ही आएगा। बच्चे क्यों माँ के साथ लिपटते हैं, कभी आपने गौर किया, उनको ये ताल्लुक याद होता है। हम अल्लाह के साथ ये ताल्लुक भूल जाते हैं, हम अल्लाह ही से दूर भागते हैं बाकी सबकी तरफ आए। तो बार बार खुद को यकीन दिलाने के लिए कहा जा रहा है इय्याका नअबुदु। और याद रखिए, कोई छोटी बात है, आपको क्या लगता है ये लफ्ज़ कहते हैं, या कनाबदु अल्लाह, मैं आपकी गुलाम हूँ, या आपकी इबादत करती हूँ, आपकी वर्शिप करती हूँ, जो भी जुमला बोलें, क्या ये बड़ा आसान जुमला? बड़ी हस्ती से किसी बात की कमिटमेंट करना एक इंसान को परेशान कर देता है। हाय नहीं, उनसे कर दिया अब तो करना पड़ेगा। हाय फुलां को कह दिया, फुलां गवर्नमेंट से हो गई है, बड़ी ताकतों से हो गई, किसी की भी आ गई, जितना किसी बड़े बंदे के सामने आप बैठ के कमिटमेंट करते हैं ना, उतना आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। तो या कनाबुदू, अल्लाह ताला से कमिटमेंट है, दिल डर रहा होता है, तभी तो फिर कहा कि इस्तगफार पढ़ो। दिन में 100 बार ये जो इस्तगफार कराई जाती है, वो ये होता है कि अल्लाह या कनाबुदू का हक नहीं अदा कर पा रही। तुझे कह तो आई थी कि या का ना बुदू, पर मेरे से होता नहीं है, मैं करूं क्या? और याद रखी कि सूरत फातह एक बंदे के जहन में उभरने वाले हर सवाल का जवाब देती है। पीछे 3 वजूहात देखी हमने अल्लाह का बंदा बनने की। क्यों मैं अल्लाह की बंदगी करूं? क्योंकि रब्बिल आलमीन है। मैं क्यों उसकी बंदगी करूं? क्योंकि रहमान रहीम है। और क्यों उसकी बंदगी करूं? क्योंकि वो मालिक यौमिद्दीन है। और इससे बहुत सारे हक हैं, लेकिन इस तरतीब में तो यही दिख रहा है। तो गोया कि या कनाबुदु कहकर एक बंदा कहता है कि अल्लाह, मैंने सही मालिक का चुनाव किया, आई एम हैप्पी कि मैं आपकी बंदी हूँ। बात लोग कहते हैं मालिक होने में क्या खूबी है? जी मैं अल्लाह जी इस पे बहुत खुश हूँ कि आप ही मेरे मालिक यौमिद्दीन है। देखिए, आपका अपना उस्ताद आपके पेपर चेक करे ना, तो आप ज़्यादा मुतमईन होते हैं, क्योंकि उसने पूरे साल की आपकी कारकर्दगी देखी होती है। अगर आखिरी दिनों में बीमार भी हो गए तो कोई बात नहीं, उसको पता है कि कोई इमरजेंसी हुई होगी। नए लोग हैं, उनके पास जाते हैं, बोर्ड के पेपर्स हैं, तो आप देखिए रिजल्ट ही बदल जाते हैं। उनके सामने सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता है। तो अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, मुझे इससे प्यारी कोई बात नहीं। एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी, इमाम शाफी हैं ये इमाम मालिक, मुझे गुमान है कि इमाम शाफी, उन्होंने कहा कि क्यामत के दिन, मैंने अपने पेपर्स में लिखी भी हुई है लेकिन इस वक्त बस वो शुबा आ रहा है दिमाग में, कहते हैं कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला अगर मुझे चॉइस दे कि क्या तुम इस पे खुश हो कि मैं तुम्हारा हिसाब लूं, मालिक यौमिद्दीन हो, या अगर तुम चाहो तो तुम चूज कर लो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा मामला सेट कर ले, समझ रहे हैं, माँ कर दे तुम्हारा हिसाब किताब अल्लाह की बजाय। तो कहते हैं अल्लाह को छोड़कर मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह हुआ रहमो, अल्लाह मुझ पर मेरे माँ बाप से ज्यादा रहम करता है। बात सच है, शुक्र अल्लाह तू रब है, तू जो करेगा, तुझे तो मेरा पता है, दूसरों को तो पता ही नहीं। उनको दूसरी बात इस जुमले की खूबसूरती देखिएगा, पहले क्या है, इया का नाबुदू, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, फिर कहा वैया का नस्ताइन, और तुझसे मदद मांगती हूँ। क्यों ये ऐसे क्यों नहीं हो गया कि या का नस्ताइन वैया का नाबुदू? सवाल लिखिए अपने पास, तरतीब ऐसे क्यों है? तो जरा वापस आ जाइए इस पे, इया का नाबुदू कहकर आप जॉब मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपना बंदा बनने की जॉब दे दें, वही या का नस्ताइन में आप बेनिफिट्स मांग रहे हैं, मैं अपनी जॉब बेस्ट तरीके से करूंगी, आप मुझे जो बेनिफिट देना चाहें मैं लेने को तैयार हूं। पहले जब तक अल्लाह ताला से कमिटमेंट नहीं की, उससे आप कुछ मांगे भी ना। तो लिख ले, जब तक आप और मैं अल्लाह के नाम पर कुछ कमिट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, फिर अल्लाह से मदद की उम्मीद ना रखें। जब एक बंदा बंदगी के दर्जे पे आ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। एक और सवाल लिखिए अपने नोट्स में, यहाँ नस्ताइन इस्तेमाल किया गया, जिसकी असल देखे ना तो ऑन है, एयानत, ऑन, मोइन, बात कर चुके हम लोग। अरबी जुबान में बहुत सारे और नाम भी हैं मदद के लिए, मसलन आप देखिए कि नुसरत, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है और अरबी में भी है, नसर, आयान, सुरू, अंसारे मदीना आपने सुना, रिद्दा का लफ्ज़ भी आता है, हज़रत मूसा ने हारून के लिए बोला था। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ऑन क्यों कहा? मदद के लिए नस्टाइन की जगह नसर ना क्यों ना कह दिया? तो इसके जवाब को समझिए ज़रा सा एक मिसाल के साथ। एयानत कहते हैं ऑन, या ऑन जो मदद है, उस वक्त किसी दूसरे से मदद मांगना जब आप खुद बेबस हो चुके हैं। मिसाल है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, आप तो नहीं, कोई मर्द है उसकी बात कर लेते हैं। अब एक सूरत है कि वो किसी राह चलते से कहे कि कैन यू हेल्प मी प्लीज़, वो कहेगा ओके श्योर, आप खुद बैठ जाए ड्राइविंग कार सीट पर और वो पीछे से जैक लगाए, जोर लगाए, और आप उसको शीशे में कहो थैंक यू, वेरी गुड, वेल डन, ओ थैंक यू, खुदा हाफिज़। अब ये भी एक मदद हुई। लेकिन दूसरा सूरत है कि आप अपनी गाड़ी से खैर से निकलिए, आप जोर लगा रहे हैं, टायर बदल रहे हैं, इतने में कोई पास है, वो कहते हैं कैन आई हेल्प यू, तो आप जो पहले ही थक चुके हैं आप कहते हैं यस प्लीज, अब वो जो मदद करता है, तो गोया कि आपने साबित किया कि मैं बेबस हो चुका था, आपने आकर मेरी उस वक्त मदद की। नस्ताइन कहकर हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मेरी बस हो गई है, मैंने हथियार डाल दिए हैं, आई गेव अप, वट एवर बेस्ट आई कैन डू आई हैव डन, अब तू आ जा, मेरी कोशिशों से वो नहीं हो सकता जो आपके साथ होगा, आई एम टोटली एग्जॉस्ट। जिंदगी में बाज दफा ऐसे हालात भी आते हैं, आप कहते हैं आई कैंट मूव फर्दर, मैं और नहीं चल सकती, दैट्स इट, ये काम मेरे बस से बाहर है, इट्स बियॉन्ड माई लिमिट, लेकिन आप कहते हैं या कनस्तैन, ए अल्लाह जहाँ मेरी हद ख़त्म होती है ना, तेरी मदद वहाँ शुरू होती है। यानी एआनत लफ्ज़ में जो बेबसी है वो लफ्ज़ नुसरत में नहीं है। हमारे दो रवैये हैं अमूमन, एक है सब कुछ अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने किया क्या मेरे साथ, अल्लाह ने बीमार कर दिया, अल्लाह ने बच्चे अच्छे नहीं दिए, अल्लाह ने बच्चों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, हर इल्ज़ाम अल्लाह पे, क्योंकि अल्लाह ने नहीं किया, बिकॉज ही डिडंट। ये ना शुक्री का रवैया है, किसी से आप बात करें वो हर बात में मिला जो नहीं है ही नहीं, चीज़ें ही नहीं ठीक, काम कैसे करें, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, ये अंदाज। दूसरी सूरत क्या होती है, आई डिड दिस, मैं आई तो ये हो गया, मैं आपके घर में आई आपका घर ठीक हो गया, मैं आई आपका खानदान ठीक हो गया। ईमान वाला इन दोनों के बीच में कहता है कि या कनाबुदू या कनस्ताइन। आप देखिए दो चीजें हैं, ये जो आप नाबुदू कह रहे हैं ना, इसके अंदर आप लिखिए मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं आपकी बात मानूं, गुलाम वही होता है ना। कभी आपने सोचा कि कोई इंप्लॉय ही हो, चले आज के दौर में स्लेवरी और मास्टरिज्म नहीं है मैं मानती हूं, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मालिक गुलाम को बेच भी आए तो वो कुछ नहीं कह सकता था, जुमे की नमाज उस पर फर्ज नहीं है, जिहाद उस पर फर्ज नहीं है, हज उस पर फर्ज नहीं, क्यों, मालिक से इजाजत लेनी पड़ती थी, आज तो वो नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप किसी जगह गए और आपने जॉब की एप्लीकेशन दी, कर दिया, हो गया कमिट, अब जब अगले दिन आप जॉब पे जाएंगे आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि मालिक की तरफ से एक वर्कशीट रखी होगी, ये है आपकी थिंग्स टू डू। अगर कोई जॉब की नीयत से जाए और आगे उसको कोई लिखी हुई चीज मिले तो क्या वो बुरा मानेगा, क्यों भाई मैं आई इसीलिए हूं। हाँ अगर पर्चा ना मिले और वो पूछे किधर गया, नहीं जी सॉरी हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो दुख होगा। गुलाम बनने में ही साथ है कि अब अल्लाह बता करना क्या है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं, एक शायद खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। खुद को मुसलमान कहने का मतलब यह है कि अल्लाह अब बता मैं क्या करूं, क्योंकि अब मैं आपसे मांग रही हूं, मेरा आपका काम क्या है, एफर्ट्स डालना, कोशिश मेरी तरफ से जितना जोर लगा सकते हैं लगा दें, उसके बाद रिजल्ट्स वैया का नस्ताइन, जो मिले उस पर मुतमईन हो जाए। अल्लाह कहते तुम मुझे अपनी बेस्ट कोशिश दो, मैं तुम्हें बेस्ट रिजल्ट दूंगा, और अगर इफ यू डोंट हैव एनी एफर्ट्स सो डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम मी। ये मेरी आपकी जिंदगी का खुलासा है। देखिए मेरे आप में से कोई परफेक्ट नहीं हो सकता जिंदगी में, कभी भी आखिरी दम तक, कभी आगे चलते हैं चले उस पर वहां बात करूंगी। अब यहां सिर्फ एक सवाल और उठाती हूँ, इसी में से लिखिए क्वेश्चन, या का नस्ताइन तो कह दिया मेरी मदद कीजिए, पर किस बात में कीजिए ये नहीं बताया, सवाल समझ गए। मैं आपसे कहती हूँ आप मेरी मदद करेंगे, आप कहेंगे जी, तो मैं कहती हूँ वो जरा किताब मुझे ला दें, मुझे पानी का ग्लास ला दें, तो आप लाएंगे, और मैं यहां बैठ के कहती रहूं आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे तो आप बाद में पूछेंगे ना क्या करूं, लेकिन यहां नहीं पूछा, बस अल्लाह को हमने ये कह दिया या कनस्ताइन, अल्लाह जी मदद कीजिए, तो क्या किस चीज में मदद करें, तो इसका दो जवाब लिखिए। नंबर एक, हर चीज में मदद चाहिए, सीधी सी बात है, ए अल्लाह मुझे आपकी हर बात में जरूरत है। दूसरा आप इसको यूं समझिए, मसलन आप कहती हैं कि आज जरा मैं अपने कमरे की सेटिंग ना चेंज कर दूं, एक सूरत क्या है कि आप अपने बच्ची को कहती हैं कि या अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी ज़रा हेल्प कर दीजिए, अब वो बच्चा है वो कर दे, जितनी करे थोड़ी करे ज़्यादा करे, आप कहते हैं ठीक है उसने कर दी उसका दिल चाहा। एक सूरत ये कि आप सोच रहे थे कि ये जो स्टैंड रखा हुआ ना इसको मैं खुद ही उठा लूंगी खेले, और आपने जो ही उसको पकड़ा वो अपनी जगह से हिल गया, लेकिन आपसे नहीं संभल रहा, अब आप उसी बच्चे को आवाज देंगे तो क्या कहेंगे, हेल्प हेल्प, आप इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, पहले तो आपने पूरी तकरीर की थी ना, आज आप मेरे साथ काम करेंगे, फिर हम ये अलमारियां इधर से मूव करेंगे, सोफे इधर उठाएंगे, ये करेंगे, ये आप कह रहे, लिख लीजिए, जितने हम बेबस होते हैं उतना हम कम बोलते हैं। आमतौर पे आप कहते हैं मुझे पानी का ग्लास ला दें, लेकिन एकदम खांसी लगी, उच्छू लग गया, तब तो कहते हैं पानी पानी, लफ्ज ही नहीं निकलते, यानी डेस्परेट होने की अलामत है। यहाँ फिर लिखिए इमोशंस हैं, आप मैं ऐसे ही पढ़ के नहीं जा सकते, या का नाबुद या का नस्तैन, फिर आप कहते वो मखारिज क्या थे, या का कहाँ से एक निकलना है, अच्छा ऐन निकालनी थी, अच्छा नून का भी मखरज है, वो भी थी, नहीं छोड़ो इनको, आप अपने जज्बात लाएं, या का नाबुदू या का नस्ताइन, अल्लाह मुझे हर मामले में मदद चाहिए, अल्लाह शिद्दत जज्बात की वजह से मेरे मुंह से लफ सिर्फ मदद मदद ही निकल रहा है, मैं इससे ज्यादा बोल ही नहीं सकती, तो डेस्परेट हूं, अल्लाह की मदद मांगे। आप देखिए हजरत उमर के बारे में आता है कि एक शख्स को देखते थे तो वो रोज काबे के पास आ जाता था और अंधा था, अल्लाह बिनाई दे दे, अल्लाह बिनाई दे दे, बिनाई दे दे, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन कहा कि कल तक तुझे आंखें ना मिली ना तो तुझे कत्ल ही करा दूंगा, कि फायदा क्या तेरी जिंदगी का। अब वो जो रोया धोया अगले दिन आंखें मिल गई, कहा सुनाओ अब क्या हुआ, कहा असल में तुझे पता था कि कल आंखें ना होने की वजह से जान भी जानी है, तो जिस शिद्दत से आज तूने मांगा अल्लाह ने तुझे दे दिया। हदीस में आता है उदुल्लाहवंत मोकिनूना बिलिजाबा, तुम अल्लाह से मांगो इस सूरत में कि तुम्हें उसकी कबूलियत का यकीन हो। तो एक बंदा अल्लाह ताला के साथ बताता है, और तीसरी चीज इसमें या का नस्ताइन में कुछ और नहीं कहा कि अल्लाह मैं तो नया नया इस्लाम में आया हूं, मैं अभी रिवर्ट हूं कन्वर्ट हूं, मुझे तो ये पता ही नहीं कितने तो दीन के अहकाम है मेरे सर पे, नमाजें 5, रोजे, शराब नहीं पीनी, जिना नहीं करना, सूद छोड़ना है, अल्लाह जी मुझे नहीं समझ आ रही या का नस्ताइन। ये हर उस न्यू मुस्लिम के लिए भी है जो शौरी मुस्लिम हो रहा है। और मैं आपको आज एक छोटी सी एडवाइस कर दूं, आपकी भी जिंदगी का एक नया बाब खुला है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे ना एकदम परेशान हो जाएंगे, हाँ ये भी नहीं से, ये भी नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं वो भी नहीं, अभी से हिम्मत टूटने लगती है, तो हिम्मत टूटने लगे तो छोड़ने की बजाय क्या करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगली आयत पे चलें, थोड़ा सा इसका खुलासा करते हैं। मांगने की चीजें तो बहुत थी, नहीं कह सके नस्ताइन कह के बात छोड़ दी, एक ऐसी चीज है जिसके बगैर बाकी चीजें भी बेकार है, और वो क्या है, हिदायत। आप दो तीन मिसालों से समझिएगा हिदायत क्या चीज होती है, अगर इसके लफ्जों में उलझाऊं आपको तो, हिदायत हुदन हदिया, गाइडेंस इज अ गिफ्ट, जिसको अल्लाह हिदायत दे देता है ना वो एक गिफ्ट है। इसकी मैं आपको किसमें लिखाना चाह रही हूं, अगर दिल चाहा तो खुलासे में कुछ बोल दूंगी, अभी आप बस इंजॉय करें। आप कहते हैं अल्लाह जी मुझे रास्ता दिखाएं, गाइड करें, मसलन आप देखिए कि पानी, आप लिखिए गाइडेंस इज इक्वल टू वाटर। हमें दुनिया में बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन आपको पता ना कि पानी सबसे कीमती चीज़ है, खाना खाए बगैर शायद बंदा 3 माह जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर शायद कुछ दिन के बाद बंदा मुरझा जाता है, अगर आप उसको किसी भी जरिए से पानी ना दें। यहाँ हिदायत की प्यास मुराद है, अल्लाह भटकी हुई थी, अब इसको एक न्यू पर्सन जो इस्लाम की तरफ आ रहा है उसको भी सोच ले, और शऊर से मुसलमान हो रहा है उसको भी सोच लीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा, ए अल्लाह बहुत प्यासी हूँ, कुछ भी तो समझ नहीं आता, मेरे सामने कोई कुरान पढ़ता है मुझे समझ नहीं आता, कोई हाफिज होता है वो हिफ्ज़ पढ़ कर रहा है मुझे आयत नहीं समझ आती, कोई नंबर पूछता है समझ नहीं आती, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ पता ही नहीं इमाम साहब क्यों रो रहे थे, अल्लाह जी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुझे गाइड कर दे। और आप देखिए कि हर लम्हे इंसान को हिदायत की जरूरत है। अच्छा दूसरी इसकी मिसाल लीजिए गाइडेंस से, किसकी रास्ता, सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की मिसाल दे दें, ये क्या बात हो गई, सीधा रास्ता क्यों मांगा। आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये सूरत कहाँ नाजिल हो रही थी, मक्का में, फिर मदीना में भी आई, अरब लोग जब सहराओं में भटक जाते थे ना तो बाज दफर रास्ता गुम होने की वजह से जो तोशा पास था वो खत्म हो जाता था, और फिर तोशे में वही मिसाल लीजिए हिदायत से मुराद पानी है, पानी खत्म होता था तो उनको यकीन हो जाता था कि अब हम यही सिसक सिसक के मरेंगे, क्योंकि ना कोई रास्ता मिलना है ना कहीं से रसद आनी है। एक बंदा सिराते मुस्तकीम यानी रास्ता मांग के अल्लाह ताला से कह रहा है कि अल्लाह मैं लॉस्ट हूं मुझे रास्ता बता दे, बात समझ आई आपको, जिस तरह प्यास लगी हो तो पानी चाहिए होता है ना, इसी तरह रास्ते में भटकने वाले बंदे से आप पूछे ना क्या चाहिए तो क्या बताएगा, महल, इधर ही मेरे लिए कोई बेड मिल जाए, सोफा, कुर्सी, मेज, जकूजी, वो एक कहेगा शो मी द वे। ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आई एम लॉस्ट, आई एम स्कैटर्ड, मैं बिखरी हुई हूँ, अल्लाह जी मैं टूटी हुई हूँ, मुझे जोड़ लो। अल्लाह जी सब मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं, आप मुझे अपना बना लें। एक बंदा जो नया नया अपने रब को पाता है ना, वो शिद्दत जज्बात से यही कहता है, अल्लाह मुझे अपने घर का रास्ता ही बता दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कभी ये ना कि आई एम गाइडेड, कि आई नीड गाइडेंस। क्यों, थोड़ा सा हिदायत पे बात करूंगी, क्योंकि मैंने शुरू में इस दफा आपको सिर्फ फातिहा का टॉपिक भी यही लिखाया था, हिदायत की दुआ। गाइडेंस इज अ गिफ्ट। कैसे? आप देखिए कि हिदायत एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है इल्म से। मैं आपको तकाबुल कराती हूँ, आप अपने नोट्स में लाइन डाल लीजिए बेशक। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास इल्म भी हो और आप हिदायत वाले हों, आप हाफिज हों और आप हिदायत वाले हों। नहीं, अगर आप कहते हैं कि हाफिज बन के हम या हमारे बच्चे हिदायत पे आ गए, तो भाई अपने बच्चों के लिए आपको चीखना क्यों पड़ता है? पढ़ो, याद करो, सर पे बैठते हैं फिर एक एक आयत याद करते हैं। दैट मीन हिफ्ज तो हो रहा है, हिदायत नहीं मिल रही। हिदायत अलग चीज़ है, इल्म लेना अलग चीज़ है। आप और मैं यहाँ आए, क्या लेने आए? शायद आप में से कुछ लोगों को ये गलती हो, तो मैं दूर कर दूँ कि आप इल्म लेने आए हैं। आपको यहाँ से इल्म नहीं मिलेगा। इल्म के जरिए, जरिया बनेगा इल्म, टूल है ये, हिदायत मिलेगी। क्योंकि पहली दुआ ये कि हदीना सिरातल मुस्तकीम। तो जब भी कहें ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या सोचें, सवाल करें खुद से, जब ये दुआ करूं तो क्या मांगूं, क्या सोचूं? तो आप ये कहें कि मुझे अल्लाह रास्ता चाहिए। अच्छा, अब यहां वो पानी और रास्ते की मिसाल ज़हन में रखिएगा। इसके मांगने की इंटेंसिटी हमारी कैसे बदलती है? मसलन जैसे मैं भी इधर बैठी, आप भी बैठे, मैं आपको कहती हूं कि मैंने भी काफी देर बैठ के इधर पढ़ाना है, जरा पानी दे दीजिए, फिर मैं पढ़ाने लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब मैंने आपसे कहा, हो सकता है आपको भी भूल जाए, आप काम में लग जाए, 15 मिनट बाद आपको याद आए, ओहो उन्होंने पानी मांगा था। आप अब लेकर हैं पानी, ले, इट्स ओके, मैंने मांगा आपसे पानी, लेकिन मुझे फौरी ज़रूरत नहीं थी। आप थोड़ी देर से भी ले आए ना, तो मैंने इतना माइंड नहीं किया। बट अगर मैं पढ़ाते हुए एकदम मेरी आवाज़ रुक जाए और मैं कहूँ पानी, और आप फिर 15 मिनट बाद आए, तो कैसा लगेगा मुझे? मैं बुरा मानूंगी, मैं कहूंगी अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैंने इशारे से सबको कह दिया आप चले जाएं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हुए आप खुद से पूछें, हाउ मच आई नीड गाइडेंस, हाउ एमरजेंसी इज दिस। हम बड़े प्यार से कहते हैं, अल्लाह गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून, अभी तो टीनेज है, अभी शादी नहीं, अभी नहीं गाइडेंस चाहिए, अल्लाह मुझे आप हिदायत दीजिएगा जरा 40 के बाद। किस किस को ये बात समझ आ गई जो मैंने अब छेड़ी है? वो कहते हैं ना कि जब दिल मानता ना हो तो दुआ में असर कहां से। बहुत सारे लोग दिन में 17 बार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो कहते हैं, पर हिदायत मिलने से डरते हैं। क्यों भला? इसकी दलील उन रास्तों से, उन गलियों से उनको खौफ आता है जहां से गुजरते हुए रास्ता बताया जाता है, गलतियों की इसलाह होती है, पॉइंट आउट की जाती है, करेक्टर बिल्डिंग होती है। तो ये दुआ कब कबूल होगी, ये सवाल करें। अब लिखिए सवाल, दिन में 17 बार सवाल करते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, तो क्या ये जवाब फौरन मिल जाता है? क्या अल्लाह ताला फौरन हमें ये दे देता है? या चले आसान सवाल लिखिएगा, क्या हर इहदिन सिरातल मुस्तकीम कहने वाले को हिदायत मिल जाती है? इसका जवाब लेना है तो जाके जरा नाइट क्लब से ले लीजिए और गुनाहों वाली जगहों से देखिए। नमाजें पढ़ने वाले भी गुनाहों में मुलव्वस हैं, शऊर की कमी है। मतलब यह है कि हर एक को हिदायत नहीं मिलती, हत्ता कि वो कहता भी है। वजह क्या है? वही जो मिसाल पानी की, किसी को याद ही, वो कल जाके याद करेगा, ओ पानी मांगा था कल इन्होंने। क्यों? आप अपने आप को कोसेंगे, हाय इन्होंने पानी मांगा, मैं भूल गई, मैं इधर उधर चली गई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन असल में ना कसूर मेरा था। किस बात पे? इसको देखिएगा जरा, असल में कसूर मेरा था कि मैंने अपनी तलब नहीं दिखाई कि हाउ सून आई नीड वाटर, कितनी जल्दी चाहिए। हम कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, बट अभी नहीं चाहिए, हज कर लूंगी ना फिर, जरा बच्चों की शादियां हो जाएं फिर, ठीक है, हो गया, जज़ाकअल्लाह। बच्चों की शादियां हो जाएं तो जब आज के बाद नमाज में पढ़ेंगे ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो फिर उस वक्त पूछें कितनी जल्दी चाहिए। देखिए, एक होते हैं आम हालात, एक होते हैं इमरजेंसी हालात, फ़र्क दोनों का समझिएगा। इमरजेंसीज में आपको होता है बहुत सारी रुकावटें दूर कर दी जाती है, पीछे हो जाए, इमरजेंसीज लग गई, कर्फ्यू लग गया। एक मर्द को मैं मिसाल में लाती हूँ, बात समझ आएगी। आपके हस्बैंड हैं या बाप हैं या भाई हैं या भाई बेटा है, कोई भी है, फजर में आपके कहने पे मस्जिद में चले गए कि बेटा आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। अब बेटा जी गए पढ़ने, देखा इमाम साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। आपके बेटा जी इधर उधर परेशान है, ये मौलवी साहब को क्या हुआ है, इनकी लड़ाई तो नहीं हो गई, सर का पेट में दर्द तो नहीं है, ये क्यों रो रहे हैं, कुछ नहीं समझ आया ये क्यों रो रहे हैं। खैर, वापस आ गए, जोहर में आपके कहने पे नहीं गए, छोड़ो नहीं गए, असर में नहीं गए, मगरिब में जाऊंगा मामा। अब वो बेटा आपका मगरिब में फिर गया। अब वहां जब गए तो इमाम साहब जो हैं वो वहां आयते पढ़े, या तुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जीला रब्बी की रा दिया तो मर्दी या फदखुली फी इबादी। फिर इमाम साहब रो पड़े, अब आपका बच्चा फिर परेशान है। ये इमाम साहब रोते ही रहते हैं, सुबह भी रोते हैं, रात भी रोते हैं, लगता है इनकी बेगम से लड़ाई हुई है। खैर, वापस आए, 1 घंटे बाद आपने फिर भेज दिया प्यार से, बेटा जाइए आप नमाज पढ़ के आइए मस्जिद में, कुरान की आयतें चल रही हैं और इमाम साहब रो रहे हैं। ये है इमरजेंसी। आपका बेटा जरूर सोचेगा बैठकर आखिर क्या चीज़ थी कि ये रो रहे थे। फिर उसको एहसास होगा मैं भी तो यही कुरान पढ़ता हूँ। हो सकता है वो झूम झूम के घूम घूम के आखिरी आयतें पढ़ते हो, लेकिन जिसके अंदर शऊर है आप पढ़ के इमामों की आयतें तो सुनिए। जो अरब कारी हैं वो जन्नत की आयतों पे भी रोते हैं, शायद आपको बताओ, हम तो जहन्नम पे रोते हैं ना, वो जन्नत पे रोते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुमस्तकामू, रो रो के बुरा हाल है। और आप इमाम शारी की आवाज़ सुनिए ज़रा सूरत हामीम सजदा की, रो रो के पढ़ें कि अल्लाह के दुश्मन जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो वहाँ वो माजरतें पेश करेंगे और कुरान के खिलाफ उनकी कोशिशें, वलगौ फीहा, रो रहे। तो ये है एमरजेंसी। दिन में 5 बार एक बंदे को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ऊपर से आवाज़ आ रही है, हेलो जी हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, वो किट पिट किट बोल रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये है इमरजेंसी। जिस दिन बंदे को ये समझ आ जाता है ना कि मैं दिन में 5 बार कुरान में जहां से भी पढ़ता हूँ मुझे समझ नहीं आती, जुम्मे को मस्जिद में जाता हूँ इमाम साहब इतना अच्छा खुतबा देते हैं अरबी में, मुझे समझ नहीं आती, दैट इज द इमरजेंसी। फिर वो जिस दिन दुआ करेगा ना कि दीना सिरातल मुस्तकीम, वो फौरन कबूल होगी। वो वैसे ही कबूल होगी जैसे हजरत उमर के हक में अल्लाह के नबी की कबूल हुई थी कि अल्लाह या तो उमर के जरिए इस्लाम को ताकत दे दे या अमर बिन हिशाम के जरिए। और जो जान लेने आ रहे थे वो दिल देकर चले गए। नबी सल्लम की ये दुआ देखिए, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है आपके सामने, यह है ना, एहदीना, हमें हिदायत दे। नबी सल्लम ने क्या कहा था, एहदी उमर, ए अल्लाह उमर को हिदायत दे। उमर के हक में अल्लाह के नबी की दुआ लग गई, लेकिन उसी जुबान ने मुबारक, वही सच्ची जुबान के ला यंते को निल हवा इन हो इल्ला वही यूहा, उसके हक में अबू जाहल के लिए दुआ कबूल नहीं हुई, अबू तालिब के लिए तड़प कबूल नहीं हुई। वजह इधर नहीं थी, उमर में सच्चाई थी, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, अमर में सच्चाई नहीं थी, अबू जाहल बन गया। बात समझ गए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ सिर्फ उसको लगेगी जो शिद्दत जज्बात से रो धो के मांगेगा। आपका बच्चा आपसे कहे अम्मी खाना, आप कहते हैं अच्छा ठीक है बेटे ने खाना मांगा, जल्दी से टेबल पर लगाते हैं, अब किधर है, आ जाओ बेटा खाना खा लो, आते हो ना, कंप्यूटर पे बैठ गया, व्हाट्सएप पे बैठ गया, फेसबुक से बातें हो रही हैं, कुछ करते करते खाना एक दफा ठंडा, दूसरी दफा ठंडा, आप बातें कर करके शोर मचा मचू के नीचे बुलाते हैं, अभी आ रहा है, बाहर हारन हुआ और दोस्त आ गए, मामा आई एम गोइंग, फिर आप कहेंगे मुझे क्यों खपाया, ऐसे कहते हो खाना लगाओ। यकीन करें जितना एक माँ फ्रस्ट्रेटेड होती है या माँ को हम पे गुस्सा आता है ना उस वक्त, अल्लाह को उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हम पे जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं बट हमारा दिल साथ नहीं होता। आज के बाद ये जुमला बोलते हुए डरे, ये बिल्कुल ऐसे है, मुझे काम बताइए, मुझे काम बताइए, मामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो मामा बताए कोई नहीं करना, लिख ले गुलामी और एहदीना साथ साथ है। गुलाम या एम्प्लॉई या मेड आते ही सुबह पूछेगी बाजी क्या करना है, गुलाम तो हर वक्त मुंतजर होता है कि आका कुछ करने को दीजिए, वो गुलाम ही गुलाम नहीं है जो मालिक से पूछता ही नहीं है। तो जब एक बंदे को हिदायत की तलब लगती है ना, तो समझ आती है। यहाँ पे बोझ पड़ेगा इसलिए मैं कोट नहीं करती, लेकिन आपको तय है कि रब होने का आखिरी दर्जा क्या है। हम कहते हैं ना कि रब हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, रब यो रबी तरबी या जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला, सुना हुआ ना। यानी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली है ये बात कि उसने हमारी सारी जरूरतें पूरी करनी है। माँ के पेट में खून से देता था, बाहर आए तो दूध के जरिए दिया, जरा खाने पीने के काबिल हो गए, हमारा सारा सिस्टम सेटल कर दिया। रब है इब्तदाई दर्जा, उसका आखिरी दर्जा क्या है? यानी अल्लाह ने हमारी जो जिम्मेदारियां ली हैं उसका आखिरी दर्जा क्या है? कि वो हमें हिदायत की भी दौलत है। कुरान की 6-7 आयतें मेरे पास नोट हैं, लेकिन मैं आज नहीं दूंगी, वो आगे जहां आएंगी तो फिर याद रखिएगा कि रब वो है जो हादी भी है। बंदे को नहीं पता मेरी जरूरतों में सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। बंदा क्या सोचता रहता है, माल, घर, गाड़ी, लाइसेंस, पेट्रोल के पैसे, कुछ पैसे जेब में जिसमें जाके कुछ खा पी सकूं, सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में, हिदायत नहीं मिलती। आपके बच्चे 10-10, 20-20 साल स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, इल्म लेने जाते हैं ना। यहाँ आप सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ये समंदर पीने वाले हैं, इमेजिन करें। यहां से आपको अगर हिदायत ना मिली, ये सब इल्म बेकार है, मेमोराइजेशन बेकार, लफ्जी तर्जमा बेकार। कोई जरूरी नहीं कि बंदा हाफिज भी हो और हिदायत वाला भी हो, आलिम भी हो। दाढ़ी, हिजाब, निकाब, हत्ता कि आप देखिए मुबल्लिग बन जाएं आप, लोग आपका नाम ले, माशाल्लाह कितना अच्छा बोलते हैं, सब मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जरूर आपके पास हिदायत हो। हिदायत एक बड़ा कीमती तोहफा है जो अल्लाह हर एक को नहीं देता, इल्म वालों को भी नहीं देता। आप मेरे से भी सुन रहे हैं, अगर कोई इल्म की बात है तो जरा आंखें कान खोल के सुनिए, कहीं मैं आपको बहका ना दूं। बहुत बहके हैं, अब आखिरी आयत में आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। सबसे बुरा बहकना इल्म के बाद बहकना है। तो आप हिदायत मांगते हैं, साथ तड़प पैदा करें। आप हमेशा कहें कि अल्लाह इल्म हासिल करूंगी, लेकिन वो तलब ना भूलें क्यों इल्म हासिल करूंगी। तो आपके इस पूरे कोर्स का जो एंडिंग प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेगा ना, आपको हिदायत याफ्ता होना है। तर्जमा नहीं याद होता तो ना से कुफर थोड़ी है, नई ग्रामर ठीक आती, नई तजवीज सही होती, वही बात है एफर्ट एंड रिजल्ट्स। एफर्ट्स आपकी, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, अगली आयत में चलें देखते हैं उसको समझ आएगी।